नहीं है, पहले भी कई दफा ये मना किया जा चुका है कि ये दिन की रात है, जाने का वक्त है, हर चीज का वक्त होता है और नमाज का वक्त दिया जाता है उम्मतों का। इस सूरत में ये बिल्कुल जायज नहीं कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाए उस वक्त, जब आप हयात को मना कर दिया गया और ये शरीयत के मुताबिक है तो ऐसी बात नहीं कि शरीयत के खिलाफ है। दीन की बात में हलन वाक़ होता है दीन की बात सुनाए जाने में, तो ये हरकत सही नहीं, ये अमल सही नहीं, इनका ही नामुनासिब अमल है। दीन को सीखें, उस पर अमल करें। जब यहाँ सुन्नतों का वक्त दिया जाता है, अगर ना दिया जाता है तब एक बात है कि चलो यहाँ नमाज का वक्त नहीं होता, तो जब वक्त दिया जाता है तो फिर इसका कोई जवाब नहीं बनता नमाज पढ़ने का। और फिर ये जो दाएं बाएं वाले हजरात हैं, शरीर के हजरात हैं, उनको प्यार मोहब्बत सख्ती नहीं करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत को रोकना चाहिए कि भाई अभी ये इसका वक्त नहीं है, वक्त दिया जाएगा इसका, बाद में नमाज उस वक्त पढ़ ली जाए। प्यार मोहब्बत को समझाना चाहिए और इस तरह करने से समझ में आ जाता है, समझ जाते हैं बच्चे ऊपर है, मुझे जैसे कि दो चार आदमी जाए हमारे अलावा बच्चों से प्यार मोहब्बत से नीचे गया और फिर वहाँ पर खड़े हों दाखिली रास्ते से बच्चों को ऊपर ना जाने में खुतबे में नमाज में फिर मुश्किल भी रहती है। बाकी रास्ते पर अगर दो रास्ते हैं ना तीन तो है, किसी सच्चे मुत्तकी के साथ रहा करे जो अपने तकवा में सच्चा है। बात असल में यह है कि दुनिया के जो मामलात हैं उनमें तो हमें समझ में आता है कहाँ भाई किसी को अपना बड़ा बनाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे फिलहाल डॉक्टर साहब हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, और सुना से हम मशवरा लेते हैं, कानून का मशवरा लेना है तो सुना से लेते हैं, और कोई उम्र खानादारी का मशवरा लेना है तो सुना से लिया जाए। यहाँ तक के खेल कूद के अंदर भी कोच रखा जाता है। ये हमारी क्रिकेट की टीमें हॉकी और पता नहीं कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनमें कोच होता है। कोच मैं पूछता हूँ ये कोच किस लिए है, कौन है ये कोच? ये कोच इसीलिए होता है कि वो आपकी गलतियाँ बताता है जिसकी वजह से आपको खेल में शिकस्त हो सकती है, उन गलतियों से बचने की जरूरत है। तो इसको तो दुनिया भी मानती है, बच्चे हैं वो MBBS कर लेते हैं 5 साल में, लेकिन उनसे ये नहीं कहा जाता कि भाई तुम अपनी अपनी क्लिनिक खोल लो, प्रैक्टिस शुरू कर दो। हर चीज नहीं, 1 साल उनको हाउस जॉब कराई जाती है। ये हाउस जॉब क्या चीज है, क्या बना है हाउस जॉब? वो यही है, मेरी संख्या ना खोले तुमको हम चाहिए। मैं वैसे ही बीमार हूँ, आज बुखार पंजाब से बुखार में मैं चला हूँ, मैंने आपको नहीं देखना चाहिए। संख्या का व्यक्त नहीं है, सेहत की हिफाजत कीजिए ये आम है, संख्या खोलना आम नहीं, सेहत की हिफाजत आम है। तो सारे होने वाले डॉक्टर्स को MBBS करने वालों को 1 साल सीनियर डॉक्टर्स की सहूलत में रखा जाता है। तो जो कुछ तुमने किताबों में पढ़ा है वो काफी नहीं है, अब रहे 1 साल और उसमें रात रात भर ड्यूटी होती है। किस तरह मरीज को डील किया जाता है, किस तरह उसको ट्रीट किया जाता है, कैसे उसका इलाज होता है, किन हालात में किस तरह इंजेक्शन लगाया जाता है, किन हालात में क्या दवाई दी जाती है, ये चीजें 1 साल में सिखाई जाती है। मैं आज कर रहा हूँ इसको तो दुनिया मानती है, लेकिन दीन के मामले में हमें समझ में नहीं आता। खेल कूद के मामले में समझ में आ गया जहाँ कोच रखा जाता है। तो जब ऐसा मामला है तो दीन के मामले में भी अल्लाह सुभानहू व तआला फरमाते हैं कि ईमान वाले तक़वा इख्तियार करें और किसी सच्चे मुत्तकी की सहबत में रहे। हाँ, सच्चा हो, ऐसा ना हो कि बकौल हमारे हजरत के बगल में दबा कर के मुर्गा ना लाया, बराबर है तू फिर से आया ना आया, बगल में दबा कर तू मुर्गा ना लाया, बराबर है तू फिर से आया ना आया। ये नहीं, इन दुकानदारों की बात नहीं हो रही, सच्ची मुस्तकी जो इत्तेबाए सुन्नत इत्तेबाए शरीयत का रास्ता लगाते हैं वो रास्ता जो अल्लाह ताला तक जाता है, वही जो नफ्स शैतान तक जाता है। उन अहले तक़वा की सहबत उठाना फर्ज है, फर्ज, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे बिल्कुल इसी तरह जैसे रोजा रखना फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, ऐसे ही किसी सच्चे मुत्तकी की सहबत उठाना, उसके बाद गाँव गाँव आना जाना, उसकी सहबत में बैठना। और मैं आगे अर्ज करूँगा अभी कि ये सहबत में बैठना भी काफ़ी नहीं है, आना जाना भी काफ़ी नहीं है, मजीद काम भी करने हैं। तो ये जरूरी है, ये फर्ज के दर्जे में है। हमारा सिलसिला 2 चीजों पर उसकी बुनियाद है, अहले हक की, हमारे बुजुर्गों का जो सिलसिला है उसकी 2 चीजों पर बुनियाद है, और ये सिलसिला जाता है हुजूर सरवर आलम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक। ये वो मुबारक सिलसिला है कि इस सिलसिले से जुड़ने वाला हर शख्स करीब करीब अपनी 3 सनदों से حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنا تعلق ثابت کر سکتا ہے. ایک تو قرآن اگر اس میں قرآن پڑھیے تو قرآن کی سند بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جائے گی, اور اگر قرآن باقاعدہ نہ پڑھی ہے تو حدیث کی سند تو پڑھی حدیث تو پڑھی ہوگی تو حدیث کی سند حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاتی ہے. اور ایسی تصور کے سلسلے کی اصلاح تزکیہ کی جو سند ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاتی ہے, سلسلہ وہاں تک جاتا ہے. تو یہ دو سلسلے تو سبھی ثابت کر سکتے ہیں. تیسرا جس نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تیسرا سلسلہ بھی ثابت کر سکتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک. تو یہ وہ مبارک سلسلہ ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھا, انہوں نے فلاں سے, میرے استاد نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے. لہٰذا یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, ایک نمبر ایک کتاب اللہ, نمبر دو رجال اللہ. کتاب اللہ اور رجال اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے ضمن میں حدیث شریف ہے. یہ حدیث میں داخل ہے کیونکہ حدیث شریف دراصل قرآن کریم کی تفسیر ہے. بہت سے ایسے احکام جو قرآن میں مجمل ہیں حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. قرآن میں حکم دیا گیا نماز پڑھو, نماز کی تعداد نہیں بتائی گئی, رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی, یہ حدیث سے پتہ چلا. زکات دینے کی تفصیل حدیث سے پتہ چلی, کس طرح زکات دینی چاہیے, کتنے مال میں کتنی زکات ہونی چاہیے, یہ حدیث سے پتہ چلا. تو بل اصل حدیث شریف بھی قرآن کریم کی تفصیل ہے. تو یہ ہے کتاب اللہ. اور دوسری بنیاد رجال اللہ کہ اللہ کے نیک بندے اہل اللہ, ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے گمراہ لوگ ہوئے صحیح راستے سے ہٹے, اعتدال کے راستے سے ہٹے, صراط مستقیم سے ہٹے, ان میں سے کسی نے یہ کیا کہ کتاب اللہ کو لے لیا, بس یہ کافی ہے, کتاب اللہ کافی ہے ہمارے لیے, حدیث شریف کی کوئی ضرورت نہیں, بس کتاب اللہ کافی ہے, انہوں نے ایک چیز کو لے لیا تو وہ بھی گمراہ ہوئے. اور کسی نے حدیث شریف کو لے لیا اور کہا کہ کتاب اللہ ضروری نہیں, قرآن کریم کا انکار کر دیا. تو یہ دونوں سلسلے ہوئے, اس طرح کے لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے صرف کتاب اللہ کو لیا وہ بھی گمراہ ہوئے, جنہوں نے صرف رجال اللہ کو لیا وہ بھی گمراہ ہوئے. لہذا کتاب اللہ کو لے کر چلنے والے, صرف کتاب اللہ کو لے کر چلنے والے وہ اس بات کے بالکل سرے سے منکر ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا چاہیے, اس سے اسلامی تعلق قائم کرنا چاہیے, اس سے اپنے حوال کی اصلاح کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. بس یہ قرآن شریف ہے, حدیث شریف ہے, یہ کافی ہے. اور دوسرا سلسلہ یہ ہے جو رجال اللہ, انہوں نے صرف رجال اللہ کو لے لیا, یہ بھی گمراہ ہوئے. یہاں تک کہ یہ مدد پہنچی کہ اب مزارات کے سجدے ہو رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, عرس ہو رہے ہیں, سامنے مرد بیٹھے ہیں, اگر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی پردہ نہیں, کچھ نہیں, یہاں تک مدد پہنچ گئی. یہ وہ سلسلہ ہے جو صرف رجال اللہ کو, بس بس قرآن کریم کو سن لینا, یہ اللہ والے ہیں, یہ کافی ہے. تو ہوتے ہوتے گمراہی کا سلسلہ یہاں تک پہنچا, کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. کتاب اللہ کو لے کر چلے ہوتے تو یہ ساری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کتاب اللہ میں موجود ہیں جن سے ان کا رد ہو سکتا تھا, پتا چلتا کہ یہ غلط ہے. تو یہ دونوں گمراہ ہوئے, جنہوں نے صرف کتاب اللہ کو لیا یہ بھی گمراہ ہوئے, اور جنہوں نے صرف رجال اللہ کو اہل اللہ کو لے لیا اور کتاب اللہ کی ضرورت ہی نہ سمجھی یہ بھی گمراہ ہوئے. और जिन्होंने साथ साथ जो साथ साथ लेकर चले दोनों को वो अहले हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का सिलसिला है जिन्होंने किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह को जमा किया कि मदारिस में कुरान और उसके दीगर उलूम की तालीम हासिल करना और किसी अल्लाह वाले से सच्चे मुत्तकी से ताल्लुक कायम करना, बच्चों क्योंकि वो किताबुल्लाह के मुताबिक लेकर चले, हदीस शरीफ के मुताबिक लेकर चले, उसके खिलाफ लेकर चल रहा था उसको भी छोड़ दिया जाए। तो ये जो दो ये इन दोनों चीजों के तो जो साथ लेकर चल रहे हैं वो अहले हक है, इसका हुक्म दिया गया कुरान करीम में या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वाले तक़वा इख्तियार करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तरीका यह है कि जब कोई मुश्किल हुक्म देते हैं तो अक्सर या अय्युहल लज़ीना आमनू उसकी इब्तिदा में आता है। ये ऐसे ही है जैसे बाप अपने बच्चे को बहुत ही कोई अहम हुक्म दे रहा है, अहम काम सौंप रहा है, तो उसको बुलाता है, बेटा घर उधर आए, बहुत प्यार से बुलाता है, फिर उसको वो अहम काम बताता है कि भाई बेटा घर ये काम कर रहा है, और फिर उसके फवाइद और उसके तरीके बताता है कि इस तरह करना है उस काम को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यार भरा खिताब फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू, फिर मुश्किल हुक्म इत्तक़ुल्लाह, तक़वा अख्तियार करो, गुनाहों से बचना आसान काम नहीं, तक़वा कहते हैं गुनाह से बचना कोई आसान काम नहीं, लेकिन तरीका ये बताया वो खोले ना अच्छा देखो उनको कोई घबराए नहीं। ये जो तरीका हम बता रहे हैं उसको इख्तियार कर लो, इसको इख्तियार करने से तुमसे गुनाह छूट जाएंगे। वो खोले ना अच्छा देखो जो अपने तकवा में सच्चे हैं उनके साथ रहो। तो इन दो चीजों को साथ लेकर चलना किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम के गए हैं, वो बड़ी अजीब बात फरमाते हैं, فرمایا کہ من تفقہ ولم يتقوم فقد تفقہ، جس شخص نے کتابوں ان کا علم حاصل کر لیا قرآن کریم کا حدیث شریف کا لیکن کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کیا، ایک وقت آئے گا کہ وہ سکتا اور سجار میں اس کا شمار ہوگا، نہ جانے اس سے کیا کیا گناہ ہوں گے، क्या क्या उससे गलतियां होंगी यहाँ तक कि शिष्य हुजूर में मुबतला होता चला जाएगा। और आगे फरमाया वमन तसव्वुर वलम यतफक्कह फकद ज़न्बा, जैसे यानी रिजालुल्लाह को ही पकड़ लो, अल्लाह वाले का रास्ता पकड़े और कहे कि नहीं हमें कुरान की जरूरत नहीं है, फिक्र की दीन का इल्म की जरूरत नहीं है, तो वो गुमराह तक पहुंच जाएगा, बड़ी गुमराही तक पहुंचेगा। वमन जमा बैना हुमा फकद तफक्कह, और जो इन दोनों को जमा कर ले बस यही हक पर होगा, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं। और इसी पर हमारी बुनियाद है कि अहलुल्लाह को किताबुल्लाह से परखा जाए, कितना उनका अमल कुरान के मुताबिक है, कितना सुन्नत के मुताबिक है, पहचान यही है। हमारे हजरत का बड़ा प्यारा शेर है, खिलाफ राय सुन्नत जो जमा करते हैं मस्ताने, वो दीवाने बज़ाहिर हैं मगर अंदर हैं फरजाने। जो सुन्नत के खिलाफ चलकर और कहते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं, जाहिर ये करते हैं कि हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो दीवाने बज़ाहिर हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे जाहिर में नजर आ रहे हैं मगर अंदर हैं फरजाने, वो अंदर से चालाक हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, ان کا حال یہ ہے کہ حضرت کے مربی اول مولانا صاحب محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حال تیرا جال ہے, حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, مقصود مال ہے لوگوں کی جیلوں سے نظر ہے, حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا, کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بہت بڑے اللہ والے بڑے پیر ہیں, دیکھتے نہیں ان کا حلقہ کتنا بڑا ہے. بعض لوگ مجنے کے زیادہ ہونے کو بھی حق پر ہونا سمجھتے, اس کی حق کی نشانی سمجھتے ہیں. یہ حق کی نشانی نہیں ہے کہ مجنا زیادہ ہو. اگر ایسے ہی ہے تو مسلمان اسلام والوں سے زیادہ اہل کفر ہیں دنیا میں, ان کا مجمع زیادہ ہے اہل کفر کا, تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مجمع زیادہ ہے. شیطان کے پاس بہت بڑا مجمع ہے, تو حق پر ہے, بہت بڑا مجمع اس کی رفاظت کی اور اس کی پیروی کر رہے ہیں. جو بھی گناہ کر رہے ہیں خود جا رہے ہیں, وہ سب شیطان کے پیروکار ہیں. اس کے بعد بہت بڑا مجمع ہے تو کیا حق پر ہو گیا؟ حق پر رہنے کی علامت یہ ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ کو جمع کر کے چلنا. جنہوں نے اس کو جمع نہیں کیا وہ کہیں نہ کہیں ان کے علم میں, ان کے عمل میں, ان کی باتوں میں, یعنی گفتار میں کہیں نہ کہیں جھول نظر آئے گا, غلطیاں نظر آئیں گی. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے تبلیغ نہیں کی؟ تبلیغ بھی بہت کی, جہاد انہوں نے کیا, علم انہوں نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی, یہ سارے کام انہوں نے کیے. تبلیغ بھی انہوں نے کی, لیکن کوئی ان کو یہ نہیں کہتا مبلغین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی بھی کہتا مجاہدین رضی اللہ عنہ, اور کوئی کہے تو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. اور کوئی نہیں کہتا کہ متعلم رضی اللہ عنہ, یا کوئی کہے معلم رضی اللہ عنہ, دین کے سیکھنے والے اور سکھانے والے, کوئی ان الفاظ سے صحابہ کو یاد نہیں کرتا. ان کا لقب ہے صحابہ, جس نام سے وہ مشہور ہوئے, یہ کیا چیز ہے صحابہ؟ صحیح و صحیح حضور کے ساتھ رہنے والے, ان کی صحبت میں صحیح و صحیح صحبت اٹھانا, ساتھ رہنا, بھائی یہی لقب مشہور ہے. اس کی برکت سے وہ مجاہدین بنے, اس کی برکت سے معلم بنے, اس کی برکت سے متعلم بنے, اس کی برکت سے مبلغ بنے. جو اصل سبب ہے وہ ان کا نام پڑ گیا. اس کی برکت سے ان کو یہ ساری دولتیں ملی, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. میں اسی لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ اعلان کیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اتباع تو اس کی جاتی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. صحابہ نے حضور کو دیکھا اور اتباع کر لی حضور کی, جیسا ان کو دیکھا ویسی اتباع کر لی اور کامیاب ہو گئے. ہم نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو ہم کتا سب کبھی ہوئی پر عمل کیسے کریں گے؟ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں سب کبھی ہوئی حضور فرما رہے ہیں میرا میری اتباع کرے, تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ نمونہ تو اس کو کہتے ہیں جو سامنے ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے حضور کی ذات بہترین نمونہ ہے, नमूना तो उसको कहते हैं जो सामने है, हमारे सामने तो नहीं है जी सल्ला तला वसलम। इब्तदा तो उसकी की जाती है जो आगे आगे चल रहा है, हम उसके पीछे चले। कभी यहाँ उस बच्चे को कहते हैं अपनी माँ के पीछे चल रहा है, माँ उसकी बकरी है उसका बच्चा उसके पीछे पीछे चलता है, चीजा है मुर्गी के पीछे पीछे चलता है, ये तबिया है, इसी से निकला तबिया यद्दा है, इसी से चलना। तो इतना तो इतना होगी है जिसके सामने है, जिसकी मजबूर मौजूद है, जिसकी इतवा दी जाए। तो इन आयतों पर अमल हम कैसे करेंगे इस जमाने में? ये तो सीधा सीधा इस्तेमाल होता है उसका, तो वजह उसका जवाब यही है कि सहाबा का काम बना था हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करके, हुजूर को नमूना बनाकर। हमारा काम बनेगा हुजूर के किसी सच्चे गुलाम सच्चे मुस्तहे के उसके साथ मिलकर, तो जो इत्तेबा सुन्नत और इत्तेबा शरीयत में डूबा हुआ हो, जिसके सबे रोज इत्तेबा सुन्नत में गुजरते हैं, इत्तेबा शरीयत में गुजरते हैं, ऐसे किसी को तलाश करके। ये है वकूल मास का दुकान, इन सच्चों के साथ रहो। तो हमारा काम ऐसे बनेगा, वरना सब कभी उन और वो लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतन हसना, इस पर हम अमल कर ही नहीं सकते। कैसे अमल है, कोई किस तरह अमल होगा? रास्ता यही है, सिवा इस रास्ते के अगर कोई रास्ता नहीं, तो कोई सच्चा मुतवे सुन्नत मुतवे शरीयत तलाश करो। वो जैसे चल रहे हैं हम भी चलें, उसके पूछ पूछ कर वो शरीयत का रास्ता सुन्नत का रास्ता बताए, हम उस पर अमल करें। शादी करनी है तो शादी ऐसे करो, गुनाहों से बचना है तो इस तरह बचो, नमाज पढ़नी है ऐसे नमाज दो, ज़कात देनी है इस तरह ज़कात दो। जब कोई बाअमल सामने हो जिसको अमल करना भी आता हो, तो अमल करना बहुत आसान हो जाता है। 20 जो किताबें छपी हुई हैं हज की, उसमें तरीका सब लिखा हुआ है, एक एक घर से निकलने से लेकर और घर वापसी तक के सारे तरीके लिखे हुए हैं, इतनी तफसील लिखी हुई है। इसके बावजूद इन किताबों को और लोग पढ़ते भी हैं, यहाँ जाने के पहले बयान भी सुनते हैं उलमा से, लेकिन वहाँ जाके सब भूल जाते हैं। वहाँ जाके तो यही सोचते हैं कि कोई हज जानने वाला हो, जिसने हज कई दफ़ा किया हो, आलिम भी हो, इल्म भी रखता हो, मसाइल भी उसको उसको याद हो, हम उसके साथ हज कर लें, ये बड़ी शहादत होगी। क्या चीज है ये, कभी हमने सोचा? ये मालूम हुआ किताब काफ़ी नहीं है, किताब अल्लाह के साथ रिजाल अल्लाह भी जरूरी है। किताब में आप तरकीब पढ़ने तैरने की, आजकल तो ये बहुत जदीद जमाना हो सकता है, कहीं मिल भी जाए उसकी कोई इंटरनेट वगैरह पर, तो उसकी तैरना कैसे चाहिए, तरीका क्या है तैरने का, और वो तरकीब पढ़ कर कोई पानी में उतर जाए तो कहाँ पहुँचेगा। हाँ, तैरने की तरकीब भी जाने और किसी तैरने वाले से भी रब्ता करें जो इंतहाई माहिर है तैरने में, उसके साथ रास्ता करके उसके साथ कुछ दिन रहे, वो आपको तैरना सिखा देगा। इसके बगैर आप ना पढ़ कर नहीं तैरना सीख सकते। एक तैरना भी आप नहीं आ सकता आपको, तो अल्लाह का कैसे सोच जाएंगे? अल्लाह ताला का सफर ऐसे ही क्या हो जाएगा? मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने बारहा जगह जगह लिखा है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करो जो तुम्हें अल्लाह तक पहुँचाए, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम करो जो अल्लाह तक पहुँचाए। एक दफ़ा इसी मस्जिद में ही इसी जगह पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती आहमद रफी उस्मानी साहब का बयान हो रहा था, मैं यहीं बैठा था उनके पहलू में, तो फरमाया खाना पकाने की तरकीब पढ़कर कोई खाना पकाना शुरू कर दो, इससे पहले खाने पकाने का कोई तजुर्बा ना हो तो पता नहीं क्या दाल का दलिया बनाएगा वो, ये अल्फाज से होंगे, पता नहीं क्या दाल का दलिया बनाएगा वो। खाने की तादाद में एक और नई डिश का इजाफा कर देगा, बस यही होगा। हालांकि वो मौजूद है सब कुछ, इसमें कितना क्या चीज कितनी डालनी है, लेकिन तजुर्बा नहीं है किसी खाने वाले से, खाना पकाने वाले से रास्ता नहीं है, तो किताब काफी थोड़ी है। और बकाल हजरत मुफ्ती तकी इब्राहिम साहब ने बोल रहे थे कि पता नहीं क्या मलबूदा तैयार करेगा, खाने पीने की तरकीबें समझे पढ़कर और खाना बनाने के लिए खड़े हो गए, तो पता नहीं क्या मलबूदा तैयार करेगा। इसलिए जिन लोगों ने किताब और रिजाल दोनों को साथ लिया, दोनों को साथ मिलाया है, वो कामयाब हुए और मंजिल तक पहुंचे। और जिन्होंने इन दोनों को साथ नहीं लिया, किताब अल्लाह और रिजाल अल्लाह को साथ लेकर नहीं चले, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सके। यही होता है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ने उनका ये हाल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तो रहे आपके जमाने में, जब आपका जमाना आप इस दुनिया से रुखसत हुए जमाना खत्म हुआ, अब सहाबा का जमाना शुरू हुआ, तो छोटे दर्जे के सहाबा ने बड़े दर्जे के सहाबा से रास्ता कायम किया, उनके साथ रहे। लिहाजा हज़रत मिसर इब्न मखरमा रज़ी अल्लाह ताला ने उसी दौर के सहाबी हैं, सहाबी हैं ये, इनकी अहादीस की मैं इनकी रिवायात आती हैं, लेकिन ये फरमाते हैं कि हम लोग हज़रत उमर के साथ सिपक के रहते थे, कुन्ना नल्लम उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन नतअल्लम मिन्हु अल-वरा, मकसद भी बताया इसलिए सिपक के रहते थे, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ चिपक कर रहते थे ताकि उनसे वरा वरा सीखें। वरा कहते हैं तकवा के आला मकाम को, तकवा के आला तरीन मकाम को, उनके मकाम को वरा कहा जाता है। ये वरा सीखने के लिए, तकवा सीखने के लिए हम हज़रत उमर के साथ चिपक के रहते थे। हालांकि वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तकवा नहीं सीखा होगा उन्होंने, सहाबी थे, लेकिन ये ऐसी चीज है ये सोहबत जो किसी लम्हे भी इससे आदमी मुस्तगनी नहीं है। हज़रत अलकमा का वाक़िया आता है मिश्कात में और दूसरी किताबों में मौजूद है, हदीस की किताबों में, वो दिमाग पहुँचे और वहाँ अल्लाह ताला से दुआ की, बुखारी शरीफ में भी ये वाक़िया है, अल्लाह मयस्सिर ली जली सनसाबिहा, अल्लाह मेरे लिए किसी अल्लाह वाले की सोहबत आसान करवा दीजिए। तो ये दुआ मसीह के पर्दे से आ रहे थे, तो ये दुआ मांगी थी तो एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत उनके पहले में आकर वो एक साथ बैठे, तो उन्होंने इतना रोब उनका पड़ा कि उनसे तो नहीं पूछा कि आपका क्या तारीफ है, दूसरों से किसी से पूछा कि नहीं ये कौन सा है, उन्होंने कहा आप इनको नहीं जानते, ये अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने हैं, हुज़ूर के सहाबी हैं। वो हैरान हो गए कि अभी तो मैंने दुआ मांगी अल्लाह से, अभी तो मैंने ये दुआ मांगी है कि अल्लाह ने ये छोड़ी जली सन सालिहा, किसी अल्लाह वाले की सहबत मेरे लिए आसान करवा दीजिए, और ये दुआ फौरन ऐसी कबूल हुई, अल्लाह ऐसे करीम है, ऐसे रहीम और शफीक है। उनको अर्ज किया कि हज़रत मैंने अभी दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने आपसे मुलाकात करवा दी। ये सहाबा का ये हाल था, कोई चले जाते थे तो परदेश में वहां भी इसको अपने आप को मुस्तगनी नहीं समझते थे। तो बड़े दर्जे के सहाबा उनसे ताल्लुक कायम किया छोटे दर्जे के सहाबा ने, चुनाचे हजरत बनी उदारी रज़ी अल्लाह ताला ने की जो मजलिस होती थी वो मस्जिद नबवी खास मस्जिद नबवी में होती थी। हज़रत अबू हुरैरा की उनके पास जो कुछ सहाबा कुछ ताबईन आके बैठ जाते थे और यही बातें होती थी, देखो अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह ताला की कुछ फरमाबरदारी अख्तियार करो, तक़वा की बातें सिखाते थे, जो कुछ हुज़ूर ने सुना था वो बताते थे। और ऐसी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने खास अंदाज में सुकून से टेक लगाकर वो बयान फरमाते थे, और कुछ जो उनके वो मुताबिक ही होते थे, उनके पास आ जाते थे। एक और बहुत बड़े साहबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में भी आता है कि उनकी हफ्तेवार मजलिस होती थी, हफ्ते में एक मरतबा और उनके घर पर होती थी। उनकी मजलिस का नज़्म उनके घर पर होता था, वहाँ उनके जो उनसे मुनासिबत रखते थे उनके पास आ जाते थे। तो भाई ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए बस आज ये मैं आज कहता हूँ कि अल्लाह के पास आना जाना काफ़ी नहीं, ये तो एक चीज पर अमल हुआ, आना जाना भी चाहिए लेकिन इसी को काफ़ी समझना ये बहुत बड़ी गलती है। दादा साहब रहमतुल्लाह का शेर याद आया, चार चीज़ें लाजमी हैं इस्तेफादे के लिए, इत्तलाए इत्तबाए एतिकादे इंकलाब। चार चीज़ें फायदा साहब ने बयान करवाई हैं इस शेर में, कि इत्तला करो अपने अयूब की, अपनी खराबियों की, अपने अहवाल की। और इत्तला भी काफ़ी नहीं, वहाँ से जो मशवरा हो दिया जाए उसकी सेवा भी तो करो, उसके बगैर कैसे गुना सीखेंगे। इत्तलाए इत्तबाए एतिकादे इंकलाब, एतिकाद भी हो, एतिकाद इसको कहते हैं कि हाँ भाई सारे जितने अल्लाह वाले हैं वो सब उनका उनकी अजमत उनका एहतराम सब आते सब, लेकिन मेरे लिए ये बेहतर रहेंगे, मेरे लिए ये बेहतर रहेंगे। ये दिल से जब आवाज़ आ जाए तो फिर ये अल्लाह की तरफ से उसको समझना चाहिए। तो यह है एतिकाद कि सब की अजमत सर आते सर जो अहले हक है, मगर मेरे लिए ये बेहतर है, मेरे लिए ये सबसे बेहतर है। ये नहीं कि यही सबसे बेहतर है, ये अकीदा भी गलत है और ये जंगत है, सबसे बेहतर यही है। ये बिल्कुल गलत है कि अपने जो शेख है उनके बारे में ये दावा कर लेना कि ये नहीं सबसे बेहतर यही है, तो ये गलत है। यूँ कहना चाहिए हाँ मेरे इल्म में ये बड़े आदमी हैं, तकवा वाले आदमी हैं, इस तरह कहना काफ़ी है। सुन लो ये सबसे बड़े आदमी हैं, पूरे जमीन पर उनकी मिसाल नहीं मिलती, ये सब गलत बात है। वो ये कहना चाहिए कि मेरे हक में ये सबसे बेहतर है, मेरे हक में की कैद लगा दें, मेरे हक में ये सबसे बेहतर है, बस मामला आसान हो गया। तो एतिकाद इसको कहा जाता है। और इंकलाब कहते हैं खुद ही गुलामी इख्तियार कर लेना, इख्तियारी तौर पर गुलाम बन जाना। जैसे धोबी के हाथ में कपड़ा होता है वो उसको पटकता है, जैसे चाहे वो करता है, फिर उसको सिल गर्म गर्म सिल फेरता है, धूप में डालता है, बड़े बड़े मुजायदात कपड़े को लेकर आता है, सबकी धूप में उसको डाला जाता है, पहले पटक के उसको धोया जाता है, फिर पत्ती धूप में डाल दिया जा रहा है अलग मुजायदा हुआ, फिर उसके ऊपर इंतहाई गर्म स्त्री हुई हमारी खाल पर फेरी जाए तो खाली ना रहे, ऐसी गर्म स्त्री ऊपर फेरी जाती है। ये कोई कम हो जाएगा फिर जब आदमी कपड़े पहनता है तो अच्छे लगते हैं, सबको अच्छा लगता है कि हाँ बड़े अच्छे खुशनुमा कपड़े पहने हुए। ये मुजाह यही देखते हैं कि कितने मुजाहदे से ये कपड़ा गुजर के ये बदन पर आया है, कितने मुजाहदे से बर्दाश्त किए तब ये अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा बनने के लिए किसी शौक के वाह हो वो हमें जैसे चाहे करें, हमसे जैसे चाहे मुजाहदा करवा, हम तो खड़े हो जाए तो हम खड़े हो जाए, चाहे बैठ जाए तो बैठ जाए, ऐसा निकल जाए वहाँ से हम निकल जाए वहाँ से, इतने दिन तक मेरे पास नहीं आना तो खत्म, तो हम उससे माफिया मांगे। तो यही चीज गुलामी कहलाती है, इसी से आदमी का दीन आता है। तो ये जो इतलाए इनकलाब इनकलाब इसको कहते हैं, इनकलाब खुद ही गुलामी इख्तियार कर लेना। तो एक तो शहबत, नंबर दो इतला करना अपने अयूब की, अपने बातनी आवाज की। आज भी सुबह हदीस पढ़ी गई है, सुबह के बाद हदीस पढ़ी जाती है, तो मैंने उसमें वजाहत भी कर दी थी। तो حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بلا انا فی بیتی فی مصلی اس دخل علی رجل، میں اپنی نماز کی جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا مصلی پر، तो एक शख्स दाखिल हुआ, उसने मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लिया, कहा जब अनियल आली है, तो मुझे अच्छा लगा कि उसने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। पूछना ये चाहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उसने जो मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए, इससे मेरी बातिन में खुशी हुई, दिल को खुशी हुई, ये कहीं रियाकारी तो नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ने का दूसरा अजर ये कि अल्लाह ने तेरी खूबी को मखलूक पर भी जाहिर कर दिया, ये भी एक अजर है, ये भी एक बदला है, नेक अमाल का बदला इस सूरत में भी दिया जाता है, तो लोगों में उसकी नेकी को मशहूर कर दिया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना रियाकारी नहीं है, गलत जज्बा नहीं है, ठीक है। ये मालिक से पूछा, अपनी बातनी कैफियत बताकर मालिक से पूछा, यही है इत्तला अहवाल और इसके बारे में मशवरा। तो ये दो चीज़ें हैं, इत्तला अहवाल और इत्तला मशवरा, उसकी जो जाए वो जो कहा जाए उसकी उसकी इत्तला की जाए। और चौथी चीज ये है कि जो बताया हुआ शख्स का जिक्र है उसकी पाबंदी की जाए, जो बता दिया गया वजाइफ बताए गए जिनकी पाबंदी के लिए कहा गया है तो उनकी पाबंदी होनी चाहिए। ये चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों को मिलाकर चलने से आदमी मुत्तकी बनता है। ये रास्ता शरीयत का मुतय्यन किया हुआ है, इसलिए जो उससे हटेगा वो मुत्तकी नहीं बन सकता। बस यही रास्ता है तकवा इख्तियार करने का, तो किसी सच्चे मुत्तकी की सोबत हो, गाय गाय उसके पास आना जाना हो, उसको अपने अहवाल की इतला की जाए। मैं खिला जमाने में चला हूँ, मुझसे सारी पर्दा नहीं होता, आंखों की हिफाजत नहीं होती, जबान की नहीं होती, कानों की हिफाजत नहीं होती, माल की मोहब्बत ज़्यादा है, दुनिया की मोहब्बत गालिब है, अल्लाह की मोहब्बत मकलूब है, दूसरों बीमारियाँ हैं, तो ये बताना और वहाँ से जो मशवरा दिया जाए उसकी इतला करना। और चौथा ये कि अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह का नाम जो सिखाया जाता है उनकी तरफ से उसकी पाबंदी करना, उसकी नागा नागिया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम खाने की नागा नहीं करते। रोजाना तीन बार नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, तो रात का खाना भी है, इसकी कोई नागा नहीं करता। तो जिक्र भी तो इसी तरह है भाई, ये जिक्र रोजाने की जाए, खाना खाने से जो आपको कमजोरी लाइफ होती है वो हम सब इसका मुशाहिदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिक्र ना करने से, तिलावत ना करने से, कुरान करीम की तिलावत ना करने से, तस्बीहात ना करने से जो बताई गई हैं उनकी उन पर अमल ना करने से रूहानी तौर से कमजोरी वाकई होती है, फिर गुनाह करता है आदमी, गुनाह में मुबतला होता है, मक्कर शैतान के हाथ में आलाकार बन जाता है। ये इसका लाजमी नतीजा है। तो ये चार चीज़ें हैं, शहबत भी उठाना ये भी ज़रूरी है, इत्तला करना अपने अहवाल की ये भी ज़रूरी है, मशवरों की इत्तला करना ये भी ज़रूरी है, बताया हुआ जिक्र और मामूलात उनकी पाबंदी करना ये भी ज़रूरी है। ये चार चीज़ें हैं, तब कहीं जाके आदमी का सफर क्या होता है वो अल्लाह तक पहुँचता है। तो लगा रहे इस वक्त आएगा इंशाल्लाह कायद नुसरत हो जाएगा, अल्लाह का ताल्लुक उससे हासिल हो जाएगा।